समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। और बहुत ही खुशनुमा मौसम दिल्ली वालों आपके लिए। और इस आधे घंटे के कार्यक्रम में मुख्य समाचार होंगे, फिर चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी डालेंगे नजर और आर्थिक जगत के उतार चढ़ाव पर भी रहेगी हमारी नजर। और आज स्ट्रेट लाइन में बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सेक्टर जो भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, एमएसएमई डे है आज, उस पर हम बात करेंगे। और कार्यक्रम के अंत में हम उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी करेंगे याद जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस। आज के संक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं रेणु कटारिया। रेणु, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार जागृति, हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम एंड एज जागृति सेड आई एम रेणु कटारिया एंड विद मी टुडे इज माय को होस्ट जागृति। एंड फॉर यू डियर लिसनर्स, एज जागृति हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड, देयर इज अ लॉट इन ऑल आवर सेगमेंट्स। एंड द बेस्ट पार्ट जागृति, आज का मौसम बहुत अच्छा है। लार्ज पार्ट्स ऑफ दिल्ली एनसीआर हैज रिसीव्ड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एंड देयर इज सो मच रिस्पाइट फ्रॉम द हॉट एंड ह्यूमिड वेदर दैट वाज परसिस्टिंग फॉर सो मेनी, आई थिंक अ कपल ऑफ मंथ्स। तो
बिल्कुल, जो गर्मी की जो तपिश थी और लोग गर्मी से बेहाल थे, उनको थोड़ा सा इस समय राहत मिली है। और ज्यादातर लोग जो है सुबह के मौसम में, क्योंकि सुबह के टाइम पर बरसात हुई तो लोगों ने यकीनन चाय और पकौड़ी का लुत्फ लिया होगा। और अभी चूंकि घड़ी में 4:30 है, लगभग 1-1.5 घंटे के बाद जब लोग ऑफिस से अपने घर पर जाएंगे तो मौसम अच्छा है, तो इस तरह के जो कजिन्स हैं उनके साथ वो अपनी शाम को और
एंजॉय करेंगे। जी बिल्कुल।
और अब तो मौसम ने भी ये इशारा कर दिया है कि आपकी जो ड्रेस है, ड्रेसिंग में भी आप बदलाव ला सकते हैं। जिस गर्मी से आप परेशान होकर सिर्फ कॉटन और बहुत लाइट कलर्स को चूज कर रहे हैं,
यू कैन वेयर कलरफुल क्लोथ्स।
जी हाँ,
यस। सो लेट्स बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस।
जी,
President Draupadi Murmu addresses joint sitting of both houses of parliament, asserts government is fully committed to investigating recent incidents of paper leaks and ensure guilty will be punished.
राष्ट्रपति ने कहा आगामी आम बजट सरकार के भविष्य की नीतियों और लक्ष्य पर आधारित होगा।
US House of Representatives passes resolution seeking independent probe into Pakistan's general elections.
मौसम विभाग का उत्तर भारत के कई हिस्सों में वर्षा का पूर्वानुमान। दिल्ली में भारी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली।
एंड इन क्रिकेट, इंडिया टू लॉक हॉर्न्स विद इंग्लैंड इन सेकेंड सेमीफाइनल ऑफ मेन्स T20 वर्ल्ड कप इन गायाना दिस इवनिंग। And listeners, now it is time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today we will talk about World MSME Day. Micro, small and medium enterprises, MSMEs, form the backbone of India's economy, contributing significantly employment generation, GDP and export. And June 27th is designated by the United Nations General Assembly as World MSME Day to acknowledge the contributors of micro, small and medium enterprises. And on 6th of April 2017, the UN General Assembly decided to observe this day to raise public awareness of their contribution to achieving the Sustainable Development Goals or SDGs.
जी हाँ, एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, ये दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है जो कि इनोवेशन, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है और जो लोग इस उद्योग में हैं उनका सम्मान करता है। एमएसएमई उद्योग के योगदान के महत्व को उजागर करते हुए इसके प्रमुख तरीकों पर भी यहां पर बात की जाती है और जमीनी स्तर पर इसकी प्रभावी मेंटरिंग पर भी की जाती है और जब बात भारत की होती है तो एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करता है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को हम संक्षिप्त में एमएसएमई कहते हैं। एमएसएमई दो प्रकार के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग उद्यम यानी उत्पादन करने वाली इकाइयां और दूसरा है सर्विस एमएसएमई इकाई। ये मुख्य रूप से सेवा देने का काम करती है और हाल ही में सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा को बदला है। नए बदलाव के अकॉर्डिंग उद्यम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में आएंगे, वो हैं सूक्ष्म उद्योग और लघु उद्योग, मध्यम उद्योग। और इसके अलावा हम अगर बात करें एमएसएमई की रेणु, तो यहां पर खास बात यह है कि जो एमएसएमई सेक्टर है यहां पर छोटे से अमाउंट से आप उद्योग की शुरुआत करते हैं, उसके लिए बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं होती है। और सरकार ने पिछले वर्षों में एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं शुरू की हैं और खास बात यह है कि अब इस सेक्टर में महिलाएं काफी आगे सामने आ रही हैं।
हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। एंड दिस इज वाई यू नो द डिसीजन टू एस्टैब्लिश एमएसएमई डे वॉज रिकग्नाइज एज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वर मेड बाय एमएसएमईज टू एम्प्लॉय generation, poverty alleviation, innovation and inclusive economic growth, and the resolution emphasized the need to support and promote these enterprises through various policies, programs and initiatives. और अगर हम देखें कि subsidies और schemes of subsidies की तरफ जागृति, the PMEGP aims to generate self-employment opportunities, providing financial assistance to individuals for setting up ventures in non-farm sectors, and the scheme offers a subsidy of about, अगर हम rural और urban की बात करते हैं, तो the scheme offers a subsidy of about 35% of the project cost for rural areas and up to 25% for urban areas, and here the beneficiaries can avail of loans up to 25 lakh rupees for manufacturing units and 10 lakh rupees for service units.
जी हाँ, आप स्कीम्स की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई, ये पीएमएमवाई गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्यमों को ऋण के प्रावधान की सुविधा प्रदान करता है। पीएमएमवाई के तहत ऋणों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कि शिशु श्रेणी रखी गई है जिसमें 50,000 तक का लोन दिया जा सकता है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक और तरुण श्रेणी में 5 लाख से 10 लाख तक, और ये ऋण बैंक, एनबीएफसी और एमएफआई जैसे भागीदार वित्तीय संस्थानों के माध्यम से दिए जाते हैं।
एंड क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेट्स एक्सेस टू कोलैटरल फ्री क्रेडिट फॉर एमएसएमईज। द स्कीम प्रोवाइड्स क्रेडिट गारंटीज टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग लोन्स अप टू 2 करोड़ रूपीज टू एमएसएमईज। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जो कि आई थिंक इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एमएसएमई डे, सो द एमएसएमई डे वॉज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एमएसएमईज इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। द डिसीजन टू एस्टैब्लिश एमएसएमई डे रिकग्नाइज द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस made by MSMEs to employment generation, poverty alleviation and inclusive economic growth. The resolution emphasized the need to support and promote these enterprises through various policies, programs and initiatives. और अगर हम हाईलाइट करें द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एमएसएमईज टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जागृति, उसके ऊपर हम बहुत कुछ जानकारी अपने लिसनर्स को दे सकते हैं, बट क्योंकि हमारे पास वक्त भी कम है तो हम थोड़ा बहुत अपने लिसनर्स को बताते हैं।
आप जब हिस्ट्री की बात कर रहे थे एमएसएमई के, तो इसी में इटसेल्फ हिस्ट्री ये बता रही है कि जो एमएसएमई सेक्टर है इससे इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। जब छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना होती है तो वहां पर रोजगार के अवसर काफी लोगों को मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात कि जब कोई भी उद्योग कहीं पर स्थापित होता है रोजगार के लिए, रोजगार के साथ साथ उस देश की अर्थव्यवस्था को उससे बहुत मजबूती मिलती है।
एग्जैक्टली, एंड वी आर हाईलाइटिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमईज टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एमएसएमईज आर एसेंशियल फॉर फॉस्टरिंग इनोवेशन, क्रिएटिंग जॉब्स एंड एडवांसिंग इकोनॉमिक प्रोग्रेस। दे आर अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर यंग पीपल एंड वुमेन। तो अगर हम वुमेन एम्पावर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो एमएसएमई डे इज एक्सट्रीमली गुड इन द कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर वुमेन टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज द चांस टू एम्फसाइज एमएसएमईज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज प्रोवाइडेड बाय एमएसएमई डे.
जी हाँ, एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. जैसे हम बात कर रहे थे रोजगार सृजन और जीडीपी में इससे वृद्धि होती है और इसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट वाली जो आय है इसमें भी महत्वपूर्ण योगदान है इसका. भारत में कृषि के बाद एमएसएमई दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता हैं जो महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और भारत में जो बेरोजगारी है और जो गरीबी है उसको कम करने में भी योगदान देते हैं. भारत में वित्त वर्ष 2022 में एमएसएमई ने 10.31 मिलियन लोगों को रोजगार दिया और वहीं जीडीपी में 30% का योगदान दिया.
And if we talk about celebrating the MSME Day around the world, it is an opportunity today, like today, it is an opportunity to celebrate the achievements of MSMEs and to commit to supporting their growth and development. By participating in these activities, people can help to ensure that MSMEs have the support they need to grow and thrive. And MSME Day is celebrated in a variety of ways around the world.
और इसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि इसके लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र और अधिक जो है आयोजित किए जाएं. जन जागरूकता अभियान और बड़े पैमाने पर इसके लिए जो है आयोजित किए जाएं क्योंकि भारत सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है एमएसएमई को समर्थन देने के लिए तो इनको लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है.
या श्योर. एंड अगेन एमएसएमई डे सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द इनवैल्युएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय MSMEs to economies worldwide.
और डेटलाइन के बाद कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं कि उनके पास क्या खास है. सबसे पहले हम कहां जाएंगे आज?
पुडुचेरी.
यस.
ओके. सो येस्टरडे जून 26 इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग वाज ऑब्जर्व्ड इन पुडुचेरी विद रियल स्पिरिट एंड नोवेल्टी विद द जनरल थीम ऑफ ड्रग फ्री पुडुचेरी. Chief Secretary Sharad Chauhan has administered pledge to all the staff in the Chief Secretariat. At the same time, the staffs in all the government offices were also taken the pledge to ensure the engagement of all the staff. It was emphasized to upload the pledge taking photos in the WhatsApp number of Social Welfare Department. And here, there's more from our correspondent.
Puducherry Police Department has taken this occasion as an opportunity to reach the public with various awareness activities. A rally organized by them reached the beach road where Chief Minister Sri N. Rangasamy administered Choose Life, Not Drugs pledge to the youths and also appealed to the youth to make India as drug-free nation. Chief Minister has also inaugurated signature campaign by signing in the awareness banner displayed in the sideline of the beach. Public Works Department Minister Sri K. Lakshmi Narayanan, Director General of Police B. Srinivas, Inspector General of Police Ajit Kumar Singla and other higher officials also participated in the event. Police Department has established a pledge-taking selfie point in the beach and most of the police personnel and the youths took selfie in that point. After this, all the participants were engaged in coastal cleaning work. Police Department has distributed awareness handbills printed with the QR code along with awareness messages. One who read the QR code with the mobile phone can reach the website. In the site, the interested persons can take e-pledge. The pledge takers can download certificate and in turn they can post the certificate in their social media accounts. This created interest among the public and many have used the QR code to take pledge online. District Collector A. Klothangan has also flagged off a rally organized by Puducherry Wing of National Mental Health Scheme. In the Yanam, Mahe and Karaikal regions of Puducherry Union Territory, all the schools have arranged events for the students to take no drug pledge. In short, the day has created strong feeling and commitment among youth and public to fight against drug abuse in the Union Territory. This is Sivakumar, Deputy Director News, Akashwani, Puducherry.
और पुदुचेरी से अब हम चलते हैं ओडिशा की ओर जहां पर बारगढ़ जिले में डिब्रूगढ़ सेंचुरी में जो मनुष्य हैं और जो जंगली जानवर हैं इनमें आपसी टकराव ना हो, क्योंकि कई बार हम ऐसी घटनाएं देखते हैं कि जब जानवर या तो गर्मी से या फिर बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस से बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाते हैं और उनके लिए भी परेशानियां होती हैं और लोगों के लिए भी परेशानियां होती हैं, तो ऐसे में वहां पर इन दोनों के सेटलमेंट के लिए एक इनोवेटिव स्टेप उठाया गया है, वो क्या है आप बताइए।
यस एंड जागृति, टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ इन द डेब्रीगढ़ सेंचुरी इन द बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, द स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन इनोवेटिव स्टेप्स टू सेटल द इश्यू पीसफुली। ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट मोर देन 400 फैमिलीज हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द डेब्रीगढ़ सेंचुरी टू अ सेफर प्लेस। द स्टेप्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट हैव यील्डेड द ग्रोथ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन द डेब्रीगढ़ सेंचुरी। एट द सेम टाइम द पीपल हु हैव बीन शिफ्टेड टू अ सेफर प्लेस enjoy a healthy environment. More from our Sambalpur correspondent.
The Debrigarh Wildlife Sanctuary in Bargarh district comes under the Hirakud Wildlife Division. Many goyals, sambar, baraha and deer can be seen roaming around here. Apart from this, tigers, leopards and elephants also live in this sanctuary. In this sanctuary, four villages namely Lambipalli, Kurumkel, Rengali and Bhutuli were there for many years. Around 400 families lived in these villages. These villages did not even have access to transport, roads and electricity. There was no access to education and health services. During the rainy season, the village were cut up from the land. There was a lot of difficulty in their movement as well. Mostly human-wildlife conflict is seen every day here. So as requested by the forest department, these families have been shifted out of the Debrigarh sanctuary. Hirakud Wildlife Division DFO Anshu Pragya Das said a compensation amount of rupees 15 lakh has been given to each family. In addition, each family has been given 10 decimals of land by the revenue department outside of the sanctuary, and the government also given money to build a house under the Biju Pakka Ghar Yojana. Until they build Biju Pakka houses, a semi-permanent colony has been built for them to live in. Each family has a house in the colony. Drinking water, electrification, community halls, children's park, Anganwadi centers and schools have also been opened in this colony. Concrete roads have also been constructed for the movement. Currently, these 400 families have started a new life outside the forest. The number of animals has also increased due to the low movement of human in the forest. Both humans and animals have benefited from the migration. For Parikrama, this is Alok Chandra Barik from Akashvani, Sambalpur.
आइए श्रोताओं, अब आपको ले चलते हैं आजादी के सफर पर।
वी रिमेम्बर फ्रीडम फाइटर राजनारायण मिश्र हु वॉज गिवन कैपिटल पनिशमेंट ऑन द 27th ऑफ जून 1944। अ रेजिडेंट ऑफ भीसमपुर उत्तर प्रदेश, मिश्र वॉज अ क्विट इंडिया एक्टिविस्ट। ही वॉज इन्वॉल्व इन द किलिंग ऑफ द थानेदार एट महमूदाबाद रियासत ऑन 14th ऑफ अगस्त 1942। He also took part in a number of acts of sabotage in the district and collected arms incognito for the purpose.
The police declared Rajnarayan Mishra an absconder after failing to arrest him from his village and put a reward on his head. He reached Madhya Pradesh under disguise but was arrested for 2 months for taking part in a protest rally.
He spent another 6 months in a Bombay jail under an assumed name for taking part in the movement. Mishra was finally identified and arrested from Meerut while staying at the home of a Gandhi Ashram worker. He was brought back to Kheri and was tried under the Arms Act for murder and sabotage.
On the 27th of June 1944, Rajnarayan Mishra was awarded capital punishment and hanged at Lucknow Jail on the 9th of December 1944 at the young age of 24.
We also remember revolutionary freedom fighter Ashwini Goha, who died on the 27th of June 1934. Born in 1906, Goha was a teacher at a high school in Chittagong. He was one of the backstage organizers of Surya Sen's group of revolutionaries and aided the revolutionaries after the Chittagong armory raid.
Goha was arrested on the 25th of April 1931 and detained in the Presidency Jail, Hijli Camp Jail and the Midnapore Central Jail. he was declared mentally unstable and unconditionally released on the 20th of February, 1934. Ashwini Guha died on the 27th of June, 1934. We salute the great freedom fighter. We also remember nationalist Mool Singh, who died on the 27th of June, 1925. Singh was a resident of Jaranwala, District Lailpur, now in Pakistan. He joined the British Indian Army, but resigned when he heard of the atrocities committed on the people at Guru Ka Bagh Morcha, Amritsar, in 1922.
Mool Singh participated in the Jatha to Bhai Phiru Gurudwara Sangat Sahib Lahore in 1924 against the British. He was arrested by the police and given rigorous imprisonment for 2.5 years. Mool Singh was tortured in detention and died during internment on the 27th of June 1925 at the age of 40. We salute the great patriot.
We also remember martyr Marbe Singh, who took part in the First War of Independence in 1857. Singh took part in the struggle for freedom from foreign rule in the Bombay Presidency and also offered arms to the independence activists in his region.
He was caught by the British and tried for sedition and rebellion against the British. He was sentenced to imprisonment and sent to the Andaman Islands, where he died in captivity on the 27th of June, 1859.
And in business news today, India's equity benchmark indices, Sensex and Nifty, rose more than 0.5% today. In intraday trade, both the indices crossed all their time highs. The Sensex rose 569 points or 0.72% to close at 79,243. Nifty gained 176 points or 0.74% to settle at 24,045.
And now, Priyanka Arora se jante hain khel ke maidan ki halchal.
बिल्कुल, आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच गयाना में रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में फिलहाल अजय रही है और उसने गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग तीनों में अपना दमखम दिखा है। जागृति, आपको बता दें कि कल से गयाना में बारिश हो रही है, फिलहाल रुक गई है और अगर मैच नहीं होता तो उस स्थिति में परिणाम भारत के पक्ष में जा सकता है। और अगर आज के पहले सेमीफाइनल की बात करें तो जो सुबह मैच हुआ था अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच, उसमें दक्षिण अफ्रीका ने बाजी मार ली। इस टूर्नामेंट में कई बार उलटफेर कर चुकी अफगानिस्तान की टीम को हार का सामना करना पड़ा। वहीं दक्षिण अफ्रीका का इस जीत के साथ जो चौकस अटैक था वो हट गया है। आज सुबह हुए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। दक्षिण अफ्रीका पहली बार टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 ओवर और 5 गेंदों में मात्र 56 रन पर सिमट गई। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज मार्को यानसन ने 3 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच चुने गए। विश्व कप का फाइनल मुकाबला शनिवार को बारबाडोस में खेला जाएगा। वहीं चलते चलते यूरो कप फुटबॉल की भी बात कर लेते हैं। उसके लिए अंतिम 16 के लिए टीमें तय हो गई हैं। इस चरण में जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, स्लोवेनिया, रोमानिया, बेल्जियम, स्लोवाकिया, तुर्की और जॉर्जिया पहुंची हैं। यूरो कप के अंतिम 16 के मैच शनिवार से शुरू हो रहे हैं। धन्यवाद।
और अब समय है उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस। और सबसे पहले आज हम याद कर रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह को। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। महाराजा रणजीत सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि अपने जीवित रहते हुए अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी फटकने नहीं दिया। ब्रिटिश इतिहासकार जे टी व्हीलर के अनुसार अगर वे एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे हिंदुस्तान को ही फतेह कर लेते। महाराजा रणजीत सिंह पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और कला को बहुत प्रोत्साहन दिया।
And today we are paying tributes to Field Marshal Sam Jamshedji Manekshaw, also known as Sam Bahadur. Sam the Brave, who was the chief of the army staff of the Indian Army during the Indo-Pakistani War of 1971 and the first Indian Army officer to be promoted to the rank of Field Marshal. His active military career spanned four decades, beginning with service in World War II. He was awarded the Padma Bhushan, the third highest Indian civilian award, in 1968 for responding to the insurgencies in Nagaland and Mizoram, and he was awarded the Padma Vibhushan, the second highest civilian award of India, in 1972 for his services to the nation. He was promoted to the rank of Field Marshal in January 1973.
जी हाँ, अदम्य साहस और युद्ध कौशल के लिए मशहूर भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्णिम दस्तखत करने वाले सबसे ज्यादा चर्चित और कुशल सैनिक कमांडर पद्म भूषण पद्म विभूषण सैम मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल थे और अपने 40 साल के सैनिक जीवन में उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के अलावा चीन और पाकिस्तान के साथ हुए तीनों युद्धों में भाग लिया। उनके दोस्त उन्हें प्यार से सैम बहादुर कहा करते थे।
And today is the birth anniversary of Rahul Dev, Rahul Dev Barman's birth anniversary, who was an Indian music director and actor and who is considered one of the greatest and most successful music directors of Hindi film music industry.
उन्होंने अपने करियर के दौरान लगभग 300 फिल्मों में संगीत दिया। उनके मधुर संगीत से जो सजे हुए गीत हैं वो हम यहाँ पर सुनते हैं।
दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है।
मैं शायर बदनाम हो मैं चला, मैं चला जाता हूँ किसी की सुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आँखों में हजारों सपने।
And Barman laid the foundation for numerous Hindi film music directors to pave the path for the future of music in Hindi language cinema. Filmfare Award he won in 1983 as Best Music Director for Sanam Teri Kasam, Best Music Director Masoom in 1995, and Best Music Director 1942, A Love Story, posthumously awarded.
जी हाँ, और मशहूर भारतीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर अमला शंकर की आज जयंती है। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें बंग विभूषण से सम्मानित किया। 1948 में कल्पना फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। 2012 में संगीत नाट्य अकादमी ने उन्हें टैगोर रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया।
And today is the birthday of Nitin Mukesh Masur, who is an Indian playback singer known for his work as a playback singer in Hindi films as well as bhajans. He has toured internationally, including to the United States in 1993 and a world tour in 2006 with his show Kal Ki Yaade as a tribute to his father Mukesh. And Nitin Mukesh has worked with notable music directors like Khayyam, R.D. Barman, Lakshmikant Pyarelal, Bappi Lahiri, Rajesh Roshan, and so many to name more. He has voiced for actors like Manoj Kumar, Shashi Kapoor, Jitendra, Anil Kapoor, Jackie Shroff and others. But here we have a very beautiful song to listen to, Jagrati.
Yeah. और भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी पीटी उषा का जन्मदिन है। उन्हें पयोली एक्सप्रेस का भी नाम दिया गया। 1976 में केरल राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक खेल विद्यालय खोला और उषा को अपने जिले का प्रतिनिधि चुना। वर्तमान में वे एशिया की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट मानी जाती हैं। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है और पीटी उषा इस समय भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन IAO की अध्यक्ष भी हैं। उन्हें पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और चलते चलते आपको बता दें कि आज तमिल भाषा के सुविख्यात साहित्यकार उपन्यासकार अखिलन की जयंती है। उन्होंने अपना अधिकांश लेखन कार्य अखिलन नाम से ही किया। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए जागृति शर्मा और रेणु कटारिया को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार।